आज है 17 अक्टूबर दिन मंगलवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। अफगानिस्तान के पकतिया प्रांत में चरमपंथी हमला, कम से कम 32 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं कांग्रेस कल से बीजिंग में शुरू होगी, क्या है मुद्दे?
सबसे बड़ी बात ये होगी कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनको फिर से 5 साल मिलेगा या न मिलेगा।
लुधियाना में अज्ञात बंदूकधारियों ने आरएसएस के एक प्रचारक की गोली मारकर हत्या की।
जो लोग पंजाब की देश की शांति नहीं चाहते और पंजाब में सौहार्द नहीं चाहते, उन लोगों का ये काम होगा।
स्मिता पाटिल के जन्मदिन पर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल उन्हें कैसे याद करते हैं?
सब लोग आके पूछते थे हीरोइन कौन है फिल्म की, और हीरोइन तो सामने बैठी हुई है लेकिन कोई उसको पहचानता नहीं था उस जमाने।
ये सब विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। अफगानिस्तान गृह मंत्रालय के अफसरों ने बताया है कि पूर्वी प्रांत पक्तिया में पुलिस केंद्र के नजदीक हुए हमले में प्रांत पुलिस प्रमुख समेत कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है और 200 से अधिक लोग घायल हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि प्रांत की राजधानी गार्देज में पुलिस केंद्र के नजदीक यह धमाका हुआ था। सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि 6 हमलावरों को मार दिया गया है। वहीं पड़ोसी राज्य गजनी में एक दूसरे हमले में 7 सैनिक और 13 लोग मारे गए हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सबसे महत्वपूर्ण सभा पार्टी कांग्रेस के आयोजन की तैयारी कर रही है। देश की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना की है। समाचार एजेंसी द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि बहु पार्टी प्रणाली केवल संकट और अराजकता लाते हैं। माल्टा की पत्रकार ब्लॉगर डेफने कारुआना ग्लिट्स की एक कार बम धमाके में मौत हो गई है। 53 साल की ग्लिट्स ने माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट और उनकी पत्नी के पनामा पेपर से जुड़े होने के आरोप लगाए थे। ग्लिट्स के बेटे मैथ्यू कारुआना ग्लिट्स ने अपनी मां की हत्या पर राष्ट्र की निंदा की है। उन्होंने माल्टा को एक माफिया राष्ट्र बताया है, हालांकि माल्टा ने इन आरोपों की निंदा की है।
I cannot agree with his views. I do empathize with the way he is expressing himself.
मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ। इस समय जिस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे हैं, उसके साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन उनके आरोप निराधार हैं। हम कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं और न्याय दिलाने के लिए हम वह सब करेंगे जो हमसे हो सकता है। ये थे माल्टा के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता कुर्त फर्रुगिया के शब्द। तथाकथित इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले सीरिया के रक्का शहर पर सीरियाई लोकतांत्रिक बलों ने कब्जा कर लिया है। लड़ाई के बाद कुर्द YPG लड़ाकों का झंडा रक्का स्टेडियम पर लहरा रहा है। यूफ्रेटिस घाटी के अलावा अब कुछ ही शहरों पर इस्लामिक स्टेट का कब्जा है। शहर पर कब्जे के लिए हुई लड़ाई में 3,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें से 1/3 आम लोग थे। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। स्पेन की कैटालोनिया सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया है कि आज़ादी के लिए अपना अभियान छोड़ने की उनकी कोई योजना नहीं है। जोर्दी तुरल ने बताया है कि उनकी स्थानीय सरकार केंद्रीय सरकार को गुरुवार को वही जवाब देगी जो उसने सोमवार को दिया था। स्पेन की केंद्रीय सरकार जानना चाहती है कि कार्लस पुज़ेमोंट ने कैटालोनिया की आज़ादी की घोषणा की है या नहीं। वहीं अलगाववादी संगठन के 2 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद बार्सिलोना में 200 लोगों ने प्रदर्शन किया। यह हमें कुचलने के लिए एक और कदम है। वो नहीं चाहते कि कैटालोनिया अपने बारे में सोचे और लोग अपना फैसला करें। यह बहुत अजीब है कि 11 सितंबर को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नेता जेल में हैं। ये थे एक प्रदर्शनकारी टोनी के शब्द। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि लीबिया के सबराता शहर में हजारों प्रवासी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था ने बताया है कि कैद से मुक्त कराए गए 14,000 लोगों को तुरंत सहायता मुहैया कराई गई है, लेकिन अभी भी 6,000 लोग मानव तस्करों के चंगुल में हैं। कुर्दी शहर किरकुक पर इराकी सरकार के सुरक्षा बलों के कब्जे के कुछ घंटों के बाद ही उत्तरी इराक के कुर्द कब्जे वाले एक दूसरे शहर पर भी सुरक्षा बलों ने कब्जा कर लिया है। सरकार समर्थित यजीदी सैनिक जब सिंजर में दाखिल हुए तो कुर्दिश पेशमेरगा लड़ाके बिना लड़े सोमवार रात शहर से चले गए। क्वालालंपुर के बियर फेस्टिवल में एक बड़े बम धमाके की तैयारी करने के आरोप में मलेशिया पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मलेशिया के पुलिस प्रमुख मोहम्मद फुजी हारून ने कहा है कि पिछले मंगलवार को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इनके पास से कई बम बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए एक आरोपी के तथाकथित इस्लामिक स्टेट के उन समर्थकों के साथ संबंध होने की आशंका जताई जा रही है जिन्होंने पिछले साल एक नाइट क्लब पर हमला किया था। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। आप इस कार्यक्रम को फेसबुक और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत पकतिया के एक सैन्य अड्डे पर हुए हमले में 32 लोग मारे गए हैं। इनमें राज्य का एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। लगभग 200 लोग घायल हुए हैं। हमारे साथी संदीप राय इस खबर पर नजर रखे हुए थे और इस वक्त मेरे सामने स्टूडियो में मौजूद हैं। संदीप, आपके पास क्या ताज़ा जानकारी है?
मंगलवार को एक के बाद एक दो चरमपंथी हमले हुए हैं अफगानिस्तान, जिससे दहला है। पूर्वी पख्तिया प्रांत की राजधानी गारदेज में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ, जिसमें कम से कम 32 लोगों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान के गृहमंत्री ने बताया है कि हमले में स्थानीय पुलिस प्रमुख भी मारे गए हैं। ट्रेनिंग सेंटर पर आत्मघाती हमलावरों और हथियारबंद लोगों ने एक साथ हमला किया था, जिसमें 160 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। गारदेज पुलिस मुख्यालय में सबसे पहले एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार समेत खुद को उड़ा लिया। इसके बाद कई हथियारबंद लोगों ने अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच घंटों गोलीबारी चलती रही, जिसमें कम से कम 5 चरमपंथी भी मारे गए हैं। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि पड़ोस के गजनी प्रांत में घात लगाकर किए गए एक दूसरे हमले के लिए भी उसे ही जिम्मेदार माना जा रहा है। गजनी में हुए हमले में सुरक्षा बल के अधिकारियों समेत 20 लोग मारे गए हैं, जबकि 24 अन्य लोग घायल हुए हैं। माना जा रहा है कि दोनों हमलों में हताहतों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। सामरिक रूप से यह अफगानिस्तान का महत्वपूर्ण ठिकाना है। यहाँ नेशनल पुलिस, बॉर्डर पुलिस और अफगान नेशनल आर्मी का मुख्यालय है।
संदीप, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब अफगानिस्तान के बाद बात करते हैं चीन की, जहाँ के सरकारी मीडिया ने पहले पश्चिमी जनतंत्र पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि बहुदलीय व्यवस्था दरअसल टकराव और विघटन पर आधारित व्यवस्था है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस कल यानी बुधवार से शुरू होने जा रही है, जिसमें तय किया जाएगा कि दुनिया के इस मजबूत देश का नेतृत्व कौन संभालेगा। बहुदलीय जनतांत्रिक व्यवस्था की आलोचना चीन की सरकारी एजेंसी शिनहुआ ने से जारी एक संपादकीय टिप्पणी में की गई है। कुछ ही देर में पार्टी कांग्रेस की तैयारियों पर जानकारी लेने के लिए चलेंगे चीन की राजधानी बीजिंग, लेकिन पहले बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट सुनिए पायल भुइयान से।
इस संपादकीय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया गया है, न ही ब्रेक्सिट का इसमें कोई जिक्र है, लेकिन अमरीका और ब्रिटेन में हो रहे अंदरूनी राजनीतिक टकराव ने चीन को अपनी एकदलीय व्यवस्था को बेहतर बताने का मौका दे दिया है। इस संपादकीय में पश्चिमी लोकतंत्र को संकट और अराजकता पैदा करने वाला बताया गया है। कहा गया है कि पश्चिमी लोकतंत्र दलदल के समान है, जहां धोखाधड़ी कलह और सरकारी नीतियों में फेरबदल आम बात है। इन सब से देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक उन्नति पर असर पड़ता है। पश्चिमी देश के मुकाबले चीन में सामाजिक समन्वय बेहतर है, मगर इस लेख में ये नहीं कहा गया है कि चीन में राजनीतिक विरोधियों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता तुओ ज़ेन ने बताया कि चीन ने सुधारों की दिशा तय कर ली है और वो इससे भटकने वाला नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग में 19वीं पार्टी कांग्रेस के जरिए चीनी सत्ता पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चीन में हर 5 साल में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में नेतृत्व संबंधी सवालों को सुलझाया जाता है। आमतौर पर गोपनीयता के लबादे में लिपटी पार्टी कांग्रेस एक अहम आयोजन होता है। चीन पर 68 साल से राज कर रही कम्युनिस्ट पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इसकी ताकत में लगातार इजाफा होता रहा है।
ये जानकारी दे रही थी पायल भुइयान। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 1949 की क्रांति के बाद से सत्ता में आई थी। तब से हर 5 साल में एक बार पार्टी कांग्रेस आयोजित की जाती है, जिसमें देश की दशा और दिशा पर चर्चा होती है और भविष्य की योजना भी तैयार की जाती है। मैंने कुछ ही देर पहले बीजिंग में वरिष्ठ पत्रकार साइबल दासगुप्ता से बात की और पूछा कि इस कांग्रेस में क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले होने हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि हर मोड़ पे, हर कदम पे, बस स्टैंड हो या सबवे हो, हर जगह सिक्योरिटी का बहुत प्रबंध किया गया है। बड़ी कड़ी नजर से आपको देखा जा रहा है। त्रिकोण में खड़े रहते हैं, मतलब कि एक पॉइंट में 3 पुलिस वाला होता है, एक नहीं, और वो 3 डायरेक्शन में देखता रहता है।
तो क्या लोगों में भी उतना ही उत्साह है? क्या सड़कों पे उत्सव का माहौल है या गंभीरता का माहौल है?
वो उत्सव वाले दिन गए। अब आम जनता अपनी जिंदगी में बिल्कुल मशगूल है। आम जनता को राजनीति से बहुत कम लेना देना है। जो 60 साल की उम्र से ज्यादा है उनको थोड़ी रुचि है, बाकी जवान लोगों को और मिडिल एज लोगों को उसमें ज्यादा रुचि नहीं है।
जो कल से कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस शुरू होगी उसमें कौन कौन सी चीजें तय की जाएंगी?
सबसे बड़ी बात ये होगी कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनको फिर से 5 साल मिलेगा या न मिलेगा, ये 99% तय है कि उनको और 5 साल मिल जाएंगे। उनका ऑफिशियल होता है पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, जो कि प्रेसिडेंट से भी बड़ा होता होता है। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है ली खचिंग, उनको 5 साल मिलेगा या उनको नहीं मिलेगा। यहाँ जो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी है, जो आपकी कैबिनेट की तरह होता है, जिसमें 7 मेंबर होते हैं, वो 7 मेंबर उनमें से करीब 5 रिटायर हो रहे हैं, तो ये जो 5 जगह खाली हो रही है उसमें कौन लोग आ रहे हैं? दुनिया का नंबर 2 अर्थ तक ये है, बिजनेस और इकोनॉमी है, तो लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ मिलिट्री का मिनिस्टर कौन बनेगा, यहाँ कॉमर्स का मिनिस्टर कौन बनेगा, यहाँ उद्योग का मंत्री कौन बनेगा। तो सारी नजर दुनिया की टिकी हुई है इस जगह पर।
राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको खोलने के बारे में या उसको ज्यादा ओपन करने के बारे में कोई विचार विमर्श होगा?
ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस बात की चर्चा होगी, क्योंकि उदारवाद तो उन्होंने 35 साल पहले शुरू किया, उसमें चमत्कार भी कर दिखाया उन्होंने, लेकिन शी जिनपिंग के चलते गत 5 साल में उदारवाद कम होती जा रही है। और आक्षेप या ये कहा जाता है कि शी जिनपिंग माओसुतुंग के जमाने में वापस ले जा रहे हैं, जहां पार्टी का महत्व ज्यादा होगा, लेकिन उदारवाद के बिना तो पार्टी भी नहीं टिक पाएगी और देश भी उन्नति नहीं करेगा। साफ ये नजर आ रहा है कि सरकार और पार्टी उदारवाद की बातें बहुत करेगी, काम पहले से बहुत कम करेगी।
बाहरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, मसलन अमेरिका, यूरोप, भारत?
देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप एशिया आ रहे हैं पहली बार प्राइम प्रेसिडेंट बनने के बाद, तो वो चीन में 3 दिन रहेंगे और इस मंथ के अंत में आ रहे हैं, इस महीने के अंत में आ रहे हैं, वो वियतनाम जाएंगे, वो फिलीपींस जाएंगे, उन सारे देशों में जाएंगे जो चाइना के साथ भिड़ रहे हैं साउथ चाइना सी के मसले को लेकर। अमेरिका भी चीन को उस नजर से देखता है कि कैसे फायदा उठाया जाए, और चीन को भी ये देखना है कि ट्रंप से दुश्मनी नहीं करना है और कैसे फायदा उठाया जाए।
ये जानकारी दे रहे थे चीन की राजधानी बीजिंग से साइबल दास गुप्ता।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आइए अब लौटते हैं भारत की खबरों पर। पंजाब के लुधियाना शहर में 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी है। 58 वर्ष के रविंदर गोसाई को उनके घर के पास ही गोली मारी गई। इस तरह फरवरी 2016 में भी आरएसएस के कार्यकर्ता नरेश कुमार पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी थी। आज की घटना की भारतीय जनता पार्टी और संघ ने कड़ी आलोचना की है। सुनिए रविंदर सिंह रोबिन की रिपोर्ट।
गोसाई आज सुबह की शाखा में भाग लेने के बाद अपने घर लौट रहे थे कि तब मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई है। गौरतलब है कि कुछ माह पहले भी जलंधर में आरएसएस के नेता जगदीश गगनेजा पर 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हमला बोला था और उस हमले में उनकी मौत हो गई थी। गोसाई पर हमला करने वाले दोनों हमलावरों की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास आ तो गई है, लेकिन पुलिस अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। लुधियाना के कमिश्नर ऑफ पुलिस आरएन ढोके का कहना है,
जो मर्डर हुआ है मिस्टर गोसाई का, उसमें कोई ब्रेक थ्रू है सर?
नहीं जी, वी आर वर्किंग ऑन दैट।
सर, क्या ये कह सकते हैं कि ये कोई पर्सनल राइवलरी थी या पॉलिटिकल कुछ इसमें से?
दिस इज वेरी प्रीमैच्योर टू से एनीथिंग ऑन दैट।
गोसाई की मौत के बाद बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं में रोष की लहर है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पिछले कुछ समय से पंजाब में भाजपा और आरएसएस की शाखाओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन पुलिस न तो हमलावरों को पकड़ पा रही है और ना ही नेताओं को सुरक्षा दे पा रही है। भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी तरुण चुग ने बीबीसी से बात करते हुए कहा,
भाई साहब, ये वैसे तो जान का विषय है, लेकिन ये आतंकी हमला है, सुनियोजित हमला है। पंजाब सरकार को अपनी लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा की जो पॉलिसी है उसको रिव्यू करना चाहिए। आरएसएस भाजपा राष्ट्रवादी संगठन है, जिन लोगों को लगता है देश की एकता और अखंडता के खिलाफ काम करना है, उन लोगों को लगता है कि आरएसएस और भाजपा उसके बीच में आएगी, इसलिए उनको निशाना बनाते हैं।
आरएसएस के लुधियाना जिले के प्रवक्ता यश गिरी का मानना है जिन लोगों ने गोसाई पर हमला कर उन्हें मारा है वे देश में शांति नहीं चाहते।
जो लोग पंजाब की देश की शांति नहीं चाहते और पंजाब में सौहार्द नहीं चाहते उन लोगों का ये काम होगा। शाखा में प्रोवोकेशन नहीं होती लेकिन शाखा के कारण से शांति होती है, सौहार्द होता है। कुछ लोगों को ये सौहार्द मंजूर नहीं है इसलिए वो ऐसा करते हैं।
यश जी आप क्या बता पाएंगे कि कितनी शाखाएं हैं लुधियाना में या पंजाब में टोटल?
शाखा में थोड़ी नंबर का घटता बढ़ता रहता है मौसम के अनुसार, किसी कार्यकर्ताओं की उसके अनुसार, वैसे लगभग 100-110 के करीब हर समय रहते।
गत 2 वर्षों में पंजाब में 6 के करीब धार्मिक शख्सियतों और प्रचारकों की हत्या हो चुकी है और कईयों पर हमले हुए हैं, लेकिन पुलिस इनमें से किसी को भी हल नहीं कर पाई है।
ये थी रविंदर सिंह रूबिन की रिपोर्ट। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि राजनीतिक पार्टियां लगातार अमीर होती जा रही हैं। 11 साल में भारतीय जनता पार्टी की जायदाद में 700% का इजाफा हुआ है और वो देश की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी बन गई है। इसी तरह दूसरी राजनीतिक पार्टियों की धन दौलत में भी बढ़ोतरी हुई है। सुनिए प्रज्ञा मानव की रिपोर्ट।
रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों के रिजर्व फंड में पिछले 11 साल में खासा इजाफा हुआ है। रिजर्व फंड उस राशि को कहते हैं जो कुल संपत्ति में से देनदारी घटाने के बाद पार्टी के पास बचती है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2004-05 से 2015-16 के बीच बीजेपी की संपत्ति में 627% का इजाफा हुआ। बीजेपी ने 2004-05 में लगभग 123 करोड़ रुपए की संपत्ति जाहिर की थी जो 2015-16 में बढ़कर करीब 894 करोड़ रुपए हो गई। पार्टी की कुल देनदारी 24 करोड़ रुपए बताई गई है, यानी पार्टी के रिजर्व फंड में साल 2015-16 तक 868 करोड़ रुपए थे। इसी दौरान कांग्रेस की संपत्ति भी 167 करोड़ से बढ़कर 758 करोड़ हो गई, लेकिन 329 करोड़ की सबसे बड़ी देनदारी के चलते रिजर्व फंड के मामले में कांग्रेस पिछड़ गई। बीजेपी के बाद सबसे बड़ा रिजर्व फंड बहुजन समाज पार्टी के पास है जो इन 11 सालों के दौरान 43 करोड़ से बढ़कर 557 करोड़ हो गया है। इस सिलसिले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तीसरे नंबर पर है, उसका रिजर्व फंड 432 करोड़ बताया गया है। एडीआर के नेशनल कोऑर्डिनेटर अनिल वर्मा का कहना है कि पार्टियां अदर असेट्स के तहत जानकारी नहीं देती, इसलिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि अदर असेट्स में क्या क्या शामिल है।
बाकी जितने भी हेड्स हैं, लोन, एडवांसेस, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह, उसमें कोई खास इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं है जैसा कि अदर एसेट्स में अगर आप देखें तो वो 108 से बढ़कर 1605 हो गया है। इसकी जो अदर एसेट्स की डिटेल्स होनी चाहिए कि भाई अदर एसेट्स में क्या है, वो डिटेल्स रिपोर्ट्स में किसी के भी नहीं मिलती है।
नामालूम स्रोत से आने वाले चंदे से जुड़ी कोई जानकारी इसमें शामिल नहीं है। नामालूम चंदा वह चंदा है जो एक तय राशि से कम होता है और पार्टियों के लिए उसे जाहिर करने की मजबूरी नहीं होती। एडीआर की ही एक और रिपोर्ट में बताया गया था कि कांग्रेस और बीजेपी की कुल कमाई का लगभग 77% नामालूम स्रोत से आता है। पिछले साल तक राजनीतिक पार्टियों पर 20,000 रुपए से कम के चंदे के बारे में जानकारी देने की बाध्यता नहीं थी, पर इसे कम करके 2,000 रुपए तक कर दिया गया है। पर क्या 2,000 रुपए से ज्यादा के चंदे को खातों में दर्ज करने की मजबूरी से राजनीतिक फंडिंग बेहतर करने में कोई मदद मिलेगी? अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार ऐसा नहीं मानते।
पहले एडीआर ने आंकड़े निकाले थे कि करीब करीब 80% जो डोनेशन आ रहे थे वो 20,000 से कम के आ रहे थे, तो ये जो नहीं खुलासा कर रहे थे और ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहे थे तो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो अननोन सोर्सेज हैं, वो शायद गलत सोर्सेज हो सकते हैं, वो ब्लैक हो सकता है। तो अगर वो स्थिति है तब तो 2000 की लिमिट भी आप लगा दें तो लोग 1900 देने लगेंगे या 1800 देने लगेंगे। तो मेरा मानना है कि सिर्फ लिमिट चेंज करने से नहीं होगा, ये तो जब तक कि पॉलिटिकल पार्टीज एग्री नहीं करती हैं, आपस में कंसेंसस नहीं बनाती हैं कि वो इस तरह का गलत पैसा नहीं लेंगी, तब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है।
काले धन को खत्म करने और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने पर बीजेपी का खासा जोर रहा है। बीबीसी ने इस रिपोर्ट पर बात करने के लिए बीजेपी से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई उपलब्ध नहीं हुआ।
ये रिपोर्ट सुना रही थी प्रज्ञा मानव और अब वक्त है एक विशेष रिपोर्ट का। झरिया की पाताली आग की कहानी नई नहीं है। झारखंड के इन कोयला खदानों में दशकों से लगी आग ने स्थानीय लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ये आग लगातार सुलगती रहती है और धीरे धीरे समूची बस्तियों को निगल लेती है। सलमान रावी की इस रिपोर्ट में आप उन लोगों की आवाजें सुनेंगे जो इस मरते हुए शहर में रहने को मजबूर हैं।
चारों तरफ धूल, धुआं, आग और जहरीली गैसें, रह रहकर कोयले की ओपन कास्ट खदानों से विस्फोट की आवाजें। कुछ ऐसी ही हालत है धनबाद के झरिया की। इस अंधेरे में जिंदगियां काली हो रही हैं और एक शहर अपना अस्तित्व तलाश करने के लिए संघर्ष कर रहा है। सैकड़ों वर्षों से कोयले में लगी आग अब शहरों को निगलने लगी है। इस आग में कई जिंदगियां भी खत्म हो रही हैं। अगस्त महीने में झरिया के बीचों बीच इंदिरा चौक पर बबलू खान और उनके पुत्र को जमीन ने निगल लिया। उनकी साली शहाना खातून का कहना है कि घटना के वक्त बबलू खान अपने बेटे के साथ बैठे हुए थे, तभी पूरी जमीन धस गई।
हम लोग के दरवाजे के पास जो है गोफ हुआ और हम लोग को छोड़ करके उधर का पीछे का आदमी को हटा दिया। हम लोग को ले जाके स्कूल में डाल दिए हैं। आके एक महीना से हम लोग स्कूल में रह रहे हैं। अपना पकाते खाते घर में आके आ जाते हैं वहाँ सोने के लिए। छोटा छोटा बच्चा लेके हम लोग कितना आ जाए करेंगे।
झरिया के मोहरी बांध में तो देखते देखते एक पूरी बस्ती पाताल में समा गई। इस बस्ती का नाम और निशान इतनी जल्दी से मिट जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। खास तौर पर जो लोग परिवार को पीछे छोड़कर काम करने के लिए बाहर गए हुए थे।
यहाँ से बराबर फोन जा रहा है कि मास्टर साहब भूदशान हो रहा है, ये फट गया, आपका घर एकदम फट गया। हम बोले कि मेरा घर फटा तो हमारा परिवार ठीक है कि नहीं, और हाँ तो परिवार सब बचल हो तो सामान सब निकल गया। इसके बाद मैं घटनाक्रम में देखा, मैं आया यहाँ पर तो मेरी जमीन जितनी जम संपत्ति थी सब नीचे चली गई, है ना, सभी सामान पलंग सोफा।
शांति देवी अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी जिस वक्त जमीन हिलने लगी। उन्हें लगा कि जैसे कोई भूकंप आ गया है।
जमीन कटरा रहा था तो हम लोग खा बना रहे थे, सबको खिलाए पिलाए, देखा जमीन को दरदराई फट रहा है तो अपना बच्चा लोग के सब निकालने की चल बाहर निकालो और यह बर्तन छोड़ दो।
बेघर लोगों के पास ना रहने की कोई जगह है और ना ही कोई सहारा। कुछ लोग तो मांग मांग कर अपना पेट भर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं भुवनेश्वर रवानी।
सब तो नीचे जमीन में चला, बर्तन कपड़े लोग पहने वही पहने हुए सबसे, न नहाने न खाने के ठीक है, न रहने के ठीक है। एक दुकान में रखा झोपड़ी में ही पड़े हुए हैं। हमारे परिवार अभी हॉस्पिटल करके आए, फिर जो पैसा खत्म हो गया परिवार पड़ा हुआ, उसको परिवार को सेवा कर रहे, वो चलने नहीं सक रही है। अच्छा चोट लग गया उसको तो कमर में, बच गए हम लोग, यही बहुत समझते बच गए।
जमीन की आग की वजह से धनबाद और चंद्रपुरा के बीच ट्रेनों को बंद करना पड़ा है। इससे पहले धनबाद से पाथरडी तक की रेल लाइन को भी बंद करना पड़ा था। हालांकि स्थानीय लोगों को सरकार के इस कदम से साजिश की बू आ रही है। पेशे से वकील विजय झा कहते हैं,
कोयला निकालने की मंशा है और आग एक बहाना है, और आग के नाम पर भयभीत करना चाहते हैं जिससे लोग भयवश अपना घर द्वार मकान व्यापार छोड़कर पलायन कर जाएं और आसानी से कोयले को निकाला जा सके।
इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्पष्ट कर दिया है कि झरिया को खाली करना ही पड़ेगा क्योंकि यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को खतरा है। तो क्या भूमिगत आग पर काबू पाना असंभव है? अगर नहीं तो फिर देरी क्यों? मगर भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सेंटर फॉर माइंस एंड फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक पी के सिंह कुछ चौंका देने वाली बातों का खुलासा करते हैं।
इन टोटलिटी फॉर ऑल द झरिया फायर,
अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लिए हमें किसी भी सक्षम एजेंसी से कोई चिट्ठी नहीं मिली है जिसमें ये कहा गया हो कि आपको आग के फैलने को रोकना होगा। अगर हमें कहा जाता है कि आप भूमिगत आग को फैलने से रोकने के प्रयासों का हिस्सा हैं तो हम इसके लिए सक्षम भी हैं और तैयार भी हैं।
कोयला कीमती है, इंसानी जिंदगियां भी। सरकारी महकमे को लगता है कि समस्या का समाधान झरिया के लोगों को हटाकर ही ढूंढा जा सकता है, मगर झरिया की आग की लपटें एक मरे हुए शहर की दास्तां हमेशा सुनाती रहेंगी। सलमान रावी, बीबीसी झरिया।
अगर आप झरिया के आसपास रहते हैं तो हमें अपने अनुभव जरूर लिख भेजिएगा। और आइए याद करते हैं उस फनकार को जो सिनेमा के पर्दे पर आती थी तो फिर बाकी सब कुछ धूमिल हो जाता था। स्मिता पाटिल की मौजूदगी ही दर्शकों को बांधे रहने के लिए काफ़ी होती थी, पर वे बहुत जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह गईं। आज अगर स्मिता पाटिल जीवित होतीं तो 62 बरस की होती। उनके जन्मदिन पर उन्हें याद कर रहे हैं फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल, जिनसे बात की हमारी सहयोगी इंदु पांडे ने।
तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, बलम जी तुमसे मिला के अखियां।
भले ही स्मिता पाटिल का फिल्मी सफर सिर्फ 10 साल का रहा हो, लेकिन उन्होंने काम ऐसा किया जो आज भी भारतीय सिनेमा में याद किया जाता है।
बदल गई मैं तो एक नजर में।
अपने सशक्त अभिनय से पहचान बनाने वाली स्मिता पाटिल का जन्म आज ही के दिन यानी कि 17 अक्टूबर 1956 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर श्याम बेनेगल इस वक्त हमारे साथ हैं। जब हमने उनसे पूछा कि यूं तो स्मिता के फिल्मी करियर की शुरुआत अरुण खोपकर की डिप्लोमा फिल्म से हुई थी, लेकिन मुख्य धारा के सिनेमा में श्याम बेनेगल ही उनको फिल्मों में लेकर के आए थे।
हिंदी में देखिए निशांत में उन्होंने पहली बार सिनेमा फिल्म में काम किया था, और उसके पहले उन्होंने मेरे लिए एक चिल्ड्रन फिल्म में काम किया था, चरणदास चोर, फिर उसके बाद निशांत, और फिर निशांत के बाद हर फिल्म में समझिए भूमिका और मंडी तक हर फिल्म में स्मिता ने काम किया मेरे साथ।
पोज़ ऐसे होता है।
अच्छा ठीक है, देखते
समझ गई ना।
ठीक है चलो चलो।
अच्छा
ऐसा बहुत कम होता है कि किसी का चेहरा कैमरे के हर एंगल से बहुत खूबसूरत लगे, और स्मिता पाटिल का चेहरा उनमें से एक था।
नाउ दिस वाज अ वंडरफुल क्वालिटी, फोटोजेनिक, जब किसी को कहते हैं ना दैट शी वाज वेरी फोटोजेनिक, क्योंकि अब नॉर्मल लाइफ में अगर आप उनको देखते तो उनका फेस आपको कोई खास इमीडिएटली याद नहीं आता, लेकिन कैमरा जब उनके ऊपर जब कैमरा हम ट्रेन करते थे तो तब आप नोबडी एल्स मैटर्ड एक्सेप्ट हर।
ऐसा ही एक डेलिकेट रिश्ता रहा उनका फिल्म एक्ट्रेस शबाना आजमी के साथ।
कोई ये प्रोफेशनल कोई खास राइवलरी नहीं थी वैसे तो, एक किस्म के मतलब मीडिया ने ऐसा किया था जैसे कि उनके बीच में कोई राइवलरी है। मुझे क्या लगता है कि बिकॉज़ स्मिता ऑलवेज यूज्ड टू फील कि शी वाज नॉट अ ट्रेन्ड एक्ट्रेस, दे वर एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास।
और सर आपके साथ ही उनकी एक फिल्म थी मंथन, जिसके बारे में हमने सुना है कि वो इतनी ज्यादा सिंप्लिसिटी के साथ सेट पे रहती थी कि जो लोकल लोग थे वो उनको पहचान नहीं पाते थे।
एक तो हम लोगों ने गुजरात में जाके शूटिंग किया था राजकोट के करीब एक गांव में, और वहां पर और स्मिता को मैंने कहा था कि अभी आप जब तक ये फिल्म में काम करेंगी गांव के लड़कियों के जैसे बिल्कुल फ्लोर लेवल पर रहना। आपको लोग आते थे राजकोट से शूटिंग देखने के लिए, क्योंकि मुंबई का फिल्म यूनिट शूटिंग कर रहा है वहाँ, तो बहुत ही मतलब काफी भीड़ होती थी, और सब लोग आके पूछते थे हीरोइन कौन है फिल्म की, और हीरोइन तो सामने बैठी हुई है लेकिन कोई उसको पहचानता नहीं था उस जमाने।
मेरो गाम कठा पाड़े जा दूध की नदियां बहे जा कोयल टोको गाए मारे घर आंगना ना भूलो ना।
स्मिता पाटिल ने अपने छोटे फिल्मी सफर में ऐसी फिल्में की जो भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर बन गई। उनकी छाप छोड़ने वाली फिल्मों में भूमिका, मंथन, मिर्च मसाला, अर्थ, मंडी और निशांत जैसी कलात्मक फिल्में शामिल हैं, तो दूसरी तरफ नमक हलाल और शक्ति जैसी व्यावसायिक फिल्में भी कतार में हैं।
She didn't live long. She died at the age of 30.
और अगर आज स्मिता पाटिल जिंदा होती तो अपना 62वां जन्मदिन मना रही होती। आज भी जब कभी बॉलीवुड के संवेदनशील कलाकारों का जिक्र होता है तो उसमें स्मिता पाटिल का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है।
करोगे याद तो।
स्मिता पाटिल को याद कर रहे थे फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल। और अब कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त हुआ है, आइए चलते चलते एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान के अफसरों का कहना है कि पूर्वी प्रांत पक्तिया में पुलिस केंद्र के नजदीक हुए हमले में प्रांत पुलिस प्रमुख समेत कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पिछले 24 घंटे के दौरान अमरीकी ड्रोन के 4 हमले हुए हैं जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सबसे महत्वपूर्ण सभा पार्टी कांग्रेस की आयोजन की तैयारी कर रही है। माल्टा की पत्रकार ब्लॉगर डेफने कारोना गलिट्स की एक कार बम धमाके में मौत हो गई है। तथाकथित इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले सीरिया के रक्का शहर पर सीरियाई लोकतांत्रिक बलों ने कब्जा कर लिया है। लड़ाई के बाद कुर्द YPG लड़ाकों का झंडा रक्का स्टेडियम पर लहरा रहा है। स्पेन की कैटलोनिया सर,
समय बिल्कुल कम बचा है, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आज का कार्यक्रम यहीं तक। इसे आप तक पहुंचाया राजेश चौहान ने। मैं राजेश जोशी आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।